बीबीसी इंडिया बोल 1 अप्रैल शनिवार सभी सुनने वालों को निखिल रंजन का नमस्कार। दिल्ली की महिला पत्रकार को फेसबुक पर बलात्कार की धमकी, कोलकाता की एक कवियत्री ने भी इसी तरह की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। सोशल मीडिया पर महिलाओं के प्रति अभद्र व्यवहार की ये घटनाएं क्या बताती हैं? क्या महिलाएं सोशल मीडिया पर महफूज नहीं हैं? क्या भारत में साइबर कानून इतने कमजोर हैं? यही है बीबीसी पर आज इंडिया बोल में चर्चा का विषय। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुफ्त फोन करें 1811 7000 या 1811 7001 पर। चर्चा थोड़ी देर में, पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में वोट डालने के बाद कागज की पर्ची निकलने की व्यवस्था पर मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सलीना सिंह को तलब किया है। ईवीएम के साथ ही वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। मध्य प्रदेश की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सलीना सिंह ने 2 विधानसभाओं के लिए 9 अप्रैल को होने वाले उपचुनाव में इस्तेमाल होने वाली मशीनों का डेमोन्स्ट्रेशन रखा था, जिस दौरान 2 अलग अलग बटन दबाने पर भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल की ही 2 पर्चियां निकली थी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने चुनाव आयोग जाकर इसकी शिकायत की। वहीं दिल्ली में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इस बारे में ये कहा,
जो जिसकी चिप विदेश से आयातित होती है उस पर भरोसा करने के लिए क्या बाध्यता है। इसलिए मैं तो आडवाणी जी से लेकर मायावती जी से लेकर सबके पक्ष में हूँ कि ईवीएम मशीन से चुनाव देश में होना नहीं चाहिए, बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव होना चाहिए।
ये थे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। चीन ने बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा की अरुणाचल प्रदेश यात्रा को लेकर विरोध दर्ज कराया है। चीन अरुणाचल प्रदेश को विवादित क्षेत्र मानता है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भारत से सीमा के विवाद को और ना उलझाने की अपील की है। दलाई लामा असम पहुंच चुके हैं, जहां से उनका अरुणाचल प्रदेश जाने का कार्यक्रम है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत मानता है। दलाई लामा ने असम पहुंचने के बाद कहा कि अरुणाचल प्रदेश की यात्रा का मकसद वहां पर धार्मिक सौहार्द का प्रचार करना है। पराग्वे में राष्ट्रपति के दोबारा चुनाव लड़ने के एक बिल के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने देश की संसद में आग लगा दी। मुख्य विपक्षी पार्टी के प्रमुख ने बताया है कि एक कार्यकर्ता की गोली लगने से मौत हो गई है। पराग्वे में 35 साल से तानाशाही शासन चल रहा है और उसके बाद 1992 में जारी संविधान में संशोधन किया गया था, जिसके तहत किसी एक राष्ट्रपति का कार्यकाल सिर्फ एक बार ही 5 साल का रखा गया था। लेकिन वर्तमान राष्ट्रपति होरासियो कार्टस संविधान में संशोधन कर इस नियम को बदलकर दोबारा राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहते हैं। पराग्वे में मौजूद एक स्वतंत्र पत्रकार लॉरी ब्लेयर ने वहां की स्थिति के बारे में ये बताया। राष्ट्रपति की योजनाओं को लेकर बहुत डर और अविश्वास का माहौल बना हुआ है। राष्ट्रपति से ज्यादा उनके नजदीकी समर्थकों को लेकर डर बना हुआ है। पराग्वे में विदेशी निवेश को लेकर भी काफी संशय है। न सिर्फ वामपंथी और उदारवादी तबके से बल्कि राष्ट्रपति की खुद की पार्टी से भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कई परंपरागत क्षेत्रों से काफी विरोध हो रहा है और उन्हें अगले साल राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से रोकने की कोशिश की जा रही है। ये थे लॉरी ब्लेयर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। बांग्लादेश में पुलिस ने कहा है कि मौलवी बाजार में इस्लामिक चरमपंथियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन में 3 लोगों की मौत हो गई है। चरमपंथ रोधी दस्ते के अधिकारी मोनिरुल इस्लाम ने कहा कि 2 दिन की मुठभेड़ के बाद 2 पुरुषों और 1 महिला के शव मिले हैं। उनका कहना था कि ये साफ नहीं है कि इन लोगों की मौत सुरक्षा बलों की गोली से हुई या इन्होंने खुद को गोली मार ली। बांग्लादेश में पिछले दिनों सुरक्षा बलों ने चरमपंथियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया था। सीरिया के होम्स में सरकार के साथ एक समझौते के बाद एक विद्रोही गुट के लड़ाकों ने अपने परिवारों के साथ इलाका खाली कर दिया है। अलवैर जिले से करीब 40 बसों में विद्रोही गुटों के सदस्यों और उनके परिवार वालों को इदलिब प्रांत की तरफ ले जाया गया है। पिछले हफ्तों में विद्रोहियों का यह 3रा दस्ता है जिससे इलाका खाली कराया गया है। बीबीसी समाचार।
नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस आप।
अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
भारत में बीते महीनों में ऐसी कई घटनाएं हुईं जब सोशल मीडिया पर अपनी बात रखने की वजह से लोग निशाना बने, कभी अश्लील फफ्तियों और गालियों के तो कभी धमकियों और मानसिक प्रताड़ना के। कई बार उन लोगों को जेल भी जाना पड़ा। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग महिलाओं के लिए दोहरा वार है, एक तरफ उनके विचारों की आलोचना, दूसरी तरफ अभद्रता की पराकाष्ठा। तो क्या भारत का साइबर कानून ये सब रोकने में सक्षम है, या फिर सोशल मीडिया पर महिलाओं की सुरक्षा खतरे की जद में है? इंडिया बोल में आज इसी विषय पर चर्चा हो रही है। मैं हूं निखिल और मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हैं पवन दुग्गल, जो भारत में साइबर कानूनों के जानकार हैं। स्वागत है आपका। और इससे पहले कि हमारी चर्चा आगे बढ़े और उसमें कुछ और लोग शामिल हों, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाह रहा था कि जो भारत में साइबर कानून हैं वो किस लिए बनाए गए हैं, किन की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, या किन चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए, नियमित करने के लिए बनाए गए हैं?
भारत में जो साइबर लॉ हमने प्रारंभ किया वो 2000 में किया, इस सूचना प्रौद्योगिकी कानून का मुख्य उद्देश्य था भारत में ई कॉमर्स को बढ़ावा देना, भारत में इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के लिए एक ढांचा प्रदान करना, और साथ ही साथ कुछ विशिष्ट प्रकार की गतिविधियों को साइबर क्राइम घोषित करना। ये उद्देश्य थे 2000 में। 2000 वाले साल में मोबाइल को भी कवर करने की बात नहीं की गई थी, लेकिन 2008 के संशोधनों में हमने कुछ बहुत विस्तार कर दिया इस कानून का। जो संशोधनों की बात शुरू हुई 26/11 के मुंबई आक्रमण के बाद, इन संशोधनों ने विभिन्न प्रकार के नए गतिविधियों को साइबर क्राइम घोषित किया। महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उन्हें सुरक्षित करने के लिए कुछ कानून बनाए ताकि वो विशिष्ट तौर पर इंटरनेट पर ट्रोलिंग के शिकार ना हो सके, इसलिए धारा 66A भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून में डाला गया, और महिलाओं को संरक्षण हेतु कुछ विशिष्ट और प्रावधान भी डाले गए, जैसे धारा 67, धारा 67A और 67B, जो महिलाओं को और बच्चों को अभद्र या अश्लील व्यवहार का विक्टिम होने से बचाने की दिशा में कदम थे। तो उद्देश्य कभी भी ये नहीं रहा कि हमने कोई विशिष्ट प्रकार के क्लास को प्रोटेक्ट करना है, सुरक्षित करना है। उद्देश्य रहा कानून को वर्तमान टेक्नोलॉजी की ग्रोथ और एडवांसमेंट के साथ तारसंगत करना।
जी पवन, हमारे साथ जुड़ रही हैं साक्षी जोशी, जो हाल ही में, आपको अगर आपको ध्यान होगा कि उनके साथ एक घटना हुई और उसके बाद उन्होंने आगे बढ़ करके पुलिस में शिकायत दर्ज की और उसका फिर नतीजा भी सामने आया है। साक्षी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप से मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो पूरा अनुभव था उसको थोड़े से शब्दों में आप बताएं कि वो कैसे, क्या हुआ, और फिर कैसे आपने इसको आगे ले जाने की सोची, और वहाँ आपका अनुभव कैसा रहा?
बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब फेसबुक पर कमेंट था, अब वो किस वजह से था, क्या पोस्ट थी, वो शायद अब बहुत ज़्यादा बेमानी हो गई है, क्योंकि जो उस पर मैंने लिखा उसके बाद एक कमेंट आया, जो अक्सर इस तरह के आते हैं जिसमें कि मेरे ओपिनियन से सामने वाला सहमत नहीं हो सकता। ठीक है, फेयर इनफ, कोई बात नहीं, आप हो सकते हैं, लेकिन आप तर्कों के साथ असहमत हुई है ना। लेकिन दिक्कत क्या हो गई है आजकल सोशल मीडिया पर कि जब तर्क खत्म हो जाते हैं तो गाली गलौज शुरू हो जाती है, और जब सामने वाला, लिखने वाला, जब उनको लगता है कि एक महिला है तो उसको और ज्यादा वो गाली गलौज करके उसको और ज्यादा डिमीन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये सबसे अच्छा तरीका, क्योंकि महिलाओं को तो यही आदत है कि भैया इग्नोर कर दो, अवॉइड कर दो, ब्लॉक कर दो, अनफ्रेंड कर दो, यही सब करके हम लोग बच जाएंगे और यही सब हम लोग कर सकते हैं। अब ये जो सोसाइटी की सोच हो गई है कि जी मैं लिखूंगा इसको और उसके बाद मैं ही विनर होकर निकलूंगा क्योंकि मैंने तो गाली दे दी। अब वहां ये हुआ कि जब उसने मुझे गाली दी तो गाली से ज्यादा मुझे ये इस बात का था कि आप अपनी बात को मनवाने के लिए क्या कहते हैं कि आपने अगर ऐसा नहीं कहा तो आप उत्तर प्रदेश में नहीं रह पाएंगी, और अगर आपने ऐसा नहीं कहा तो मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा। ये मेरे लिए ज्यादा बड़ा थ्रेट था। इसके सबसे पहले, उस वक्त पहले मैंने सोचा कि मैं इसको अनफ्रेंड कर भी दिया, लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं भी अगर अनफ्रेंड कर दूंगी तो मैं क्यों, मतलब दूसरे मैं कैसे लड़ूंगी अगर अपना कहते, मैं खुद के लिए नहीं लड़ सकती, मैं दूसरे के लिए कैसे लड़ूंगी। तो मैंने क्या किया कि फेसबुक पे क्योंकि SSP नोएडा मेरे फ्रेंड लिस्ट में थे, तो मैंने सबसे पहला काम ये किया कि मैंने उनको टैग कर दिया, टैग करके स्नैपशॉट डाल के दिखा दिया। अब वो अच्छी बात ये हुई कि शायद मेरा लक भी अच्छा था कि वो एक ऐसे SSP निकले जिन्होंने उसको बहुत जल्दी कार्रवाई करने के लिए उन्होंने खुद कहा, और उन्होंने मुझे कहा यू प्लीज सेंड मी योर नंबर मुझे फेसबुक के थ्रू ही, और आप इस पे FIR कर सकते हो। तो मैंने जैसे उन्होंने मुझे गाइड किया वैसे ही मैं जाकर FIR करके आई, और उसी के बाद जो हुआ वो आप सबको पता ही है। बहुत जल्दी उन लोगों ने सूरत से जाके उस लड़के को पकड़ के लाए, जिससे मुझे लगता है एक बहुत बड़ा एग्जांपल उन लोगों के लिए हुआ है जो अब तक बोलते आ रहे थे, अब तक लड़कियों को महिलाओं को इस तरह से टारगेट करते आ रहे थे, और ये सोच के कि ये ज्यादा ज्यादा कर क्या लेंगी, अगर मेरे खिलाफ केस कर भी लेंगे तो कुछ होने वाला तो
जी, जी
जब रिजल्ट आया है तो उसके बाद थोड़ा सा मुझे लगता है असर हुआ होगा इसका।
जी साक्षी की का अनुभव आपने सुना, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि इसमें क्या इतना आसान होता है हर बार, क्योंकि बहुत कम ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं।
मैं मानता हूँ साक्षी का जो उदाहरण है वो नॉर्मल उदाहरण नहीं है, इन्हें बहुत जल्दी रिड्रेस मिल गया है, और वो इसलिए है कि शायद इनकी खुशकिस्मती है। अगर कोई नॉर्मल साधारण लड़की जो एक पत्रकार ना हो वो इस तरह की गतिविधि को रिपोर्ट करेगी तो शायद उसको उतनी तेज रफ्तार से रिस्पांस नहीं मिलेगा। उसका कारण ये है, हमारे यहाँ जो सिस्टम प्रणाली मौजूद है वो फिलहाल साइबर क्राइम से जूझने के लिए तैयार नहीं है।
यही मैं पूछना चाह रहा था कि मतलब अक्सर कई बार तो पुलिस को पता ही नहीं होता कि ये कुछ गलत भी हुआ है, जो हमारी सिस्टम है या पुलिस के जो शीर्ष अधिकारी जब तक इसमें इन्वॉल्व ना हो तो निचले स्तर पर, लेकिन अधिकार दे दिए गए हैं इंस्पेक्टर लोगों को इसकी जाँच करने के, क्या वो हैं इतने सक्षम?
यही विडंबना है कि कानून ने पहले कहा था 2000 में कि केवल डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या DCP आपके साइबर क्राइम कर सकते हैं, लेकिन 2008 के संशोधनों में अधिकार इंस्पेक्टर लेवल अधिकारियों को दे दिया गया। लेकिन आज की तारीख में इंस्पेक्टर लेवल के पास आप जाइए तो वो कहता है कि मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्राइम ज़्यादा ज़रूरी हैं, जैसे कि रेप, किडनैपिंग या मर्डर, और ये साइबर तो बहुत ही छोटा सा है। एक खाली उदाहरण देता हूँ, एक केस आया जहाँ पर एक लड़की की अश्लील तस्वीरों को लगातार थ्रेटन किया जा रहा था कि उन्हें रिलीज कर दिया जाएगा पब्लिक डोमेन में, और वो लड़की अपना मुकदमा लेके गई पुलिस थाने में, लेकिन पुलिस थाने ने कहा कि करीबन एक हफ्ते और दो हफ्ते के बाद आप आइएगा तब हम देखेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी समय नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो लैक ऑफ सेंसिटिविटी है पुलिस अधिकारियों की, उसको एड्रेस करने की जरूरत है। देखिए साइबर क्राइम कभी दस्तखत देकर नहीं आता
जी।
आप कभी भी शिकार बन सकते हैं साइबर क्राइम के, और जब आप शिकार बनते हैं आपकी ये महत्वाकांक्षा होती है कि साहब मैं जब जाऊं तो मुझे तुरंत रिड्रेस मैकेनिज्म मिले। हाँ, आप अपनी वेबसाइट पर भेज सकते हैं, स्टेट पुलिस की वेबसाइट पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन वहां पर भी बहुत कोई जल्दबाजी से काम नहीं होता और बहुत खरामा काम चला जाता
जी। मैं आपके पास फिर आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जरा उनके पूछते हैं कि उनकी क्या राय है। जी अपना नाम बताइए।
हेलो जी, मैं पठान खान गजी बोल रहा हूँ, बाड़मेर कितनौरिया गांव से। मेरा सवाल ये है कि अभी कानून क्यों नहीं बनाया कठोर ऐसा, ये सोशल मीडिया पर एक दो को सजा हो तो पता चले लोगों को जी ये कानून ऐसा बन गया है
जी।
इधर व्यवहार जो करते हैं उनके लिए कानून बनना चाहिए
जी। बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ एक और श्रोता जुड़ रहे हैं। जी अपना नाम बताइए।
जी मैं अब्दुल अजीज भट्ट बोल रहा हूँ जी, जम्मू कश्मीर के सुनकोट क्षेत्र से।
जी जी भट्ट साहब बताइए, कहिए क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर।
ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे भारत में अभी जो जुडिशरी है या पुलिस है इस पर सियासत का जो असर है वो ज्यादा होने वाला है, और जो विक्टिम होता है आज या कोई महिला होती है या कोई भी, तो उनका जो सुनवाई है वो बहुत कम होने लगी है। कानून हमारे पास बहुत है लेकिन हमारी जो जुडिशरी और हमारी जो पुलिस है ये सियासत के नीचे दबी हुई है, इनको आजाद तौर से काम नहीं करने दिया जाता है
जी। बट साहब,
दूसरा हमारी संस्कृति में जब तक हम लोग खुद ये जिम्मेवारी नहीं समझेंगे कि
बिल्कुल बिल्कुल बट साहब आपने बिल्कुल सही बात कही कि जब तक खुद हम जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। साक्षी हमारे साथ है। साक्षी आप कह रही थी कि जब आपने शिकायत करने की सोची तो बहुत सारे जो आपके हितैषी लोग हैं वो भी शायद आपको सलाह दे रहे थे कि आप पुलिस में ना जाकर के दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करें, प्लीज बताइए।
जी बिल्कुल, इस तरह की तो हमेशा आती ही है सोच लोगों की, ऐसी होती है क्योंकि हर आदमी का ऐसा ही सोचना होता है क्यों पढ़ना है इन सब चक्करों में, क्यों कोर्ट कचहरी में पढ़ना। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ, ये साइबर एक्ट IT एक्ट के तहत ये पहली बार मैंने केस में किया, इससे पहले भी मैं जूझ चुकी हूँ, और जिस शख्स के खिलाफ मैंने तब भी IT एक्ट के तहत केस किया था मैंने अपनी तरफ से हमेशा कोशिश की कि अगर इसने मेरे खिलाफ ऐसा किया है, मैं एंड तक लड़ूंगी, मैं एंड तक इसे सजा दिलाने के लिए जाऊंगी। और 65 दिन जब वो डासना जेल में काट कर आया था, तो मेरे को लगा कि शायद मैं इस बार जीती हूँ, और इस बार भी मैंने वही किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि खुद के एंड तक इसको परस्यू करना जरूरी है। हम महिलाएं क्या होती हैं, ये सोच कर हो जाती है कि हमारी इज्जत का क्या है, क्यों हम लोग किसी को दिखाएं कि मेरे बारे में क्या बोला है। मुझे इस बारे में कोई शर्म नहीं, मेरे बारे में जो बोला, जो बोलता है वो उसकी प्रॉब्लम है, वो उसने अपनी अपनी घटिया सोच दिखाई है, ना कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, तो मैं क्यों ना आगे बढ़ूं। दिक्कत बस यही है कि शायद मुझे लगता है कि कई केसेस इसीलिए सॉल्व नहीं हो पाते, क्योंकि जो कंप्लेनेंट होता है वो सिर्फ कंप्लेन करने के बाद आगे उस केस को परस्यू भी नहीं करते, आगे बहुत ज्यादा उसके लिए जो है ना जद्दोजहद करनी पड़ती है, वो नहीं करते।
जी साक्षी,
अपने घर से निकल के कोर्ट भी जाना
पड़ता है। जी बिल्कुल साक्षी, मैं आपसे ये भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब आपने शिकायत करने की सोची या जब आपने कदम बढ़ाए इस काम के लिए, तो सिस्टम के पार्ट पर क्या दिक्कत आपको पेश आई सिस्टम के पार्ट पर?
मैंने आपको पहले ही बोला था कि शायद मैं बहुत लकी निकली, या फिर ऐसा हुआ लक मेरा ये रहा कि मैं जिनके थ्रू, यानी कि SSP नोएडा धर्मेंद्र सिंह जी, उनके थ्रू मैं गई, तो शायद वो ज्यादा ही सीरियस इस बात को लेकर निकले, और मेरे को उनके बारे में और पता चला कि उन्होंने मिसिंग चिल्ड्रन को लेकर भी एक ऑपरेशन स्माइल चलाया था पहले गाजियाबाद में, जो कि मिसिंग चिल्ड्रन को लेकर लोग जो पुलिस महकमा होता है बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होता। तो मुझे लगता है कि वो छोटे इशूज जो लोग मानते हैं उनको वो बड़ा मानते हैं, और उन्होंने मुझे सिंपली ये कहा कि ये इशू जो है सब लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं, सेंसिटिव लेकिन इशू है, एक बार करना जरूरी है, हम एंड तक इसको करने की कोशिश करेंगे और इसको पकड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से वो खुद ही इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग उस वक्त थे इस सोच के साथ कि उन्होंने खुद ही कदम ये उठाया, और इस
जी,
वजह से
जी साक्षी
मेरा लक था शायद।
जी साक्षी, साक्षी की बात से आपको पता चल रहा होगा कि पुलिस के कुछ अधिकारी हैं जो अपने लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, बहुत ध्यान होगा आपको कि राजनेताओं के खिलाफ, अभी यूपी में भी ऐसा हुआ कि राजनेताओं के खिलाफ या फिर जो प्रदेश के या उसके जो बड़े लोग हैं उनके खिलाफ कोई बात कहने पर, आपको महाराष्ट्र का वाकया याद होगा
जी,
जब बाल ठाकरे के खिलाफ एक टिप्पणी पर दो लड़कियों को जो है जेल में डाल दिया गया था या उनके खिलाफ मुकदमे शुरू हुए थे, उसका एक दूसरा रूप हम इस तरह से भी देखते हैं, तो ये कैसे संभव हो पाता है, कैसे उनके खिलाफ कार्रवाई इस तरह के मामलों में हो जाती है और इस तरह के मामलों में दिक्कत होती है?
देखिए भारतवर्ष में एक VIP कल्चर होता है, अगर आप VIP हैं, आप राजनेता हैं तो, और आप कंप्लेंट करते हैं तो आपकी आपकी कंप्लेंट पर जल्दी सुनवाई होती है। अगर आप साधारण नागरिक हैं और अगर आप सोचते हैं कि कानून का आप सहारा लेना चाहते हैं, तो अक्सर आपको निराश होना पड़ता है, क्योंकि जिस तेज़ रफ्तार से कार्रवाई VIPs के केसेस में होती है वो आम आदमियों के केसेस में नहीं होती है। हालांकि अगर आप कानून के प्रावधानों पर दृष्टि डालें तो आप पाएंगे कि कानून इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। प्रॉब्लम ये होती है कि अधिकांश जो पुलिस अधिकर्मी हैं वो इस तरह की केसेस को समझने में बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं हो पाते। भारतवर्ष को समूचे तौर पर देखें तो हमारे यहाँ कुछ बहुत अच्छे पुलिस अधिकर्मी हैं जो इस तरह की चार्जेस को और केसेस को समझते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी भी आवश्यकता है जागरूकता फैलाने की, और कहीं ना कहीं पुलिस को एक सिटीजन फ्रेंडली अप्रोच अपनाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि एक ऑलरेडी बंदा विक्टिम है किसी साइबर ट्रोलिंग का, उसके बाद
वो पुलिस
के पास जाए या पुलिस के हाथ में एक सेकंड लेवल ऑफ हैरेसमेंट फेस करे, तो वो एक डबल तरह की ड्यूपर्टी और डबल नुकसान हो जाता है जिसको हमें सीरियसली अवॉइड करना चाहिए।
हमारे साथ कुछ और श्रोता जुड़ रहे हैं। जी अपना नाम बताइए।
मेरा नाम मोहम्मद शफी जागल, जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ सर, फूड सेमेटर से सर।
जी मोहम्मद शफी जादव साहब, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप इस मुद्दे पर?
सर मेरी थोड़ी सी गौर से बात सर, दुनिया में कोई ऐसा काम है जो वो नहीं हो सकता, सब काम दुनिया में हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहली बात ये है कि जब ये कानून जो है जो सही बनता है हमारे देश में, कोई ऐसा कानून नहीं है जो गलत हो, सब कानून जो दूसरी भी है ठीक है, लेकिन मैं आपको एक सर बताना चाहता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश में क्यों कानून जो है नासा सख्ती से हो रहा है, वहाँ का चीफ मिनिस्टर जो है वो एक कानून को कड़े रूप से पुलिस का सफाई तक पहुँचता है, और पुलिस रात को चकन्ना होकर काम करती है, गली गलियों में फिरती है, सब चीफ मिनिस्टरों की कमजोरी है ये, अगर चीफ मिनिस्टर सही हो तो कौन सी लड़की या किस बच्ची को छेड़ सकता है कोई, ये सब जो अगर जो है सियासी लीडरों की है, कानून है ही नहीं, चीफ मिनिस्टर नहीं को अच्छे कानून को नाफज नहीं कर सकते, पुलिस को सिस्टम को सही नहीं कर सकते, इसलिए जो बच्चियां हैं वो रो रही हैं, जी, कानून का सत्यानाश।
जी 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 शफी साहब, आपने अपनी बात कह ली और हम सब आपकी बातों के मर्म को समझते हैं। हमारे साथ नाजमा जुड़ रही हैं, वो भी एक महिला हैं, दिल्ली में रहती हैं। उनकी क्या व्यथा है, उनकी क्या कहना है, ये सुनते हैं। जी नाजमा,
पहले तो मैं बात करूंगी साक्षी जी की।
जी।
जैसे साक्षी ने बताया कि उनके केस में बहुत अच्छी कार्रवाई हो गई बहुत जल्दी।
जी।
लेकिन अभी पिछले दिनों हमने देखा था कि गुरमेहर के साथ जो भी हुआ था, ट्रोलिंग हुई थी, जो भी हुई थी, मुझे नहीं पता कि उनके केस में उनको थ्रेट करने वालों की के खिलाफ अभी तक कार्रवाई हुई है या नहीं। ठीक है, तो दूसरा ये कि अभी सर ने हमें बताया कि ऐसे केसेस में पुलिस जो मामले हैं उनको थोड़ा सा मतलब नीचे या दो आम दर्जे का ले लेती है, तो क्या हमें वेट करना होगा कि एक लड़की को रेप थ्रेट दिया जा रहा है, तेजाब फेंकने का थ्रेट दिया जा रहा है और वो घटनाएं हो जाए उसके बाद हम पुलिस के पास जाएं। अभी कुछ दिन पहले एक पोस्ट पे मैंने एक कमेंट किया था
जी,
तो लड़की तो छोड़िए, मेरा नाम नाजमा और एक मुस्लिम होने के नाते मुझे लगा कि नाजमा लड़की कम हो गई थी और मुस्लिम उसको ओवरलैप कर रहा था। मुझे ऐसे ऐसी चीजें बोली जा रही थी कि एट लास्ट मैंने उस जिस बंदे की कमेंट पे मैंने कमेंट किया था मुझे उनको अनफ्रेंड करना पड़ा। हालांकि वो आगे बढ़ के आए और उन्होंने मुझे कहा कि आप क्यों चली गई, आप आइए और उनको मैं अनफ्रेंड करूंगा। लेकिन मतलब ये क्या है, कैसा टूल आ गया है लोगों के हाथ में, उन्हें पता नहीं है कुछ लेकिन इलिटरेट है, यूज किए जा रहे हैं लड़कियां सॉफ्ट टारगेट है, उनको टारगेट किए जा रहे हैं, ट्रोल किए जा रहे हैं। तो मतलब ये क्या है, अगर आप किसी जिले में रह रहे हैं तो उसकी अकॉर्डिंग उसके प्रशासन के हिसाब से आपको कहना होगा, आप राज्य में रह रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको कहना होगा, और अब मतलब सोशल मीडिया में है तो जो लोग वो बोलना चाहते हैं सुनना चाहते हैं तो अब हम सोशल मीडिया पे भी यही कहेंगे कि आपको जो सुनना है वही हमको कहना है।
जी
ये क्या है।
जी नाजमा, नाजमा की बात आपने सुनी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था जो शायद नाजमा का भी सवाल है कि इस तरह के मामलों में क्या कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि प्रशासन या पुलिस खुद सक्रिय होकर के आगे आए या कहीं कोई कार्रवाई करने के लिए बढ़े या इस तरह के सिस्टम बनाए जाएं जहां पर आसानी से लोग शिकायत दर्ज करा सकें।
देखिए अगर पुलिस चाहे तो पुलिस बहुत कुछ कर सकती है, उस तरह की पावर्स उनको दिए गए हैं खासतौर पर भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून में। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि जब तक कोई बहुत प्रेशर आने की ज़रूरत नहीं होगी तब तक हम अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अधिकांश पुलिस अधिकर्मियों को एक थोड़ी बहुत ये घबराहट रहती है कि साहब अगर हमने केस दर्ज कर लिया पता नहीं हम केस सॉल्व कर पाए ना पाए, और फिर ये गले में हड्डी बन के रह जाए, ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी। और अधिकांश भारतवर्ष के सिस्टम पुलिस सिस्टम में जहाँ पर आपकी जो तरक्की है प्रमोशन होती है वो नंबर ऑफ केसेस सॉल्व पर होती है, नॉट नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर्ड, तो अधिकांश लोगों को बहुत प्रोत्साहन नहीं मिलता। लेकिन मैं मानता हूं कि हमें घटनाओं के होने का इंतजार बिल्कुल नहीं करना है और इसलिए आवश्यकता है कि अब कानून में हम संशोधन लेकर आएं, खास तौर पर ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी जिम्मेवारी को लेकर। अधिकांश सर्विस प्रोवाइडर्स जो भारतवर्ष में नहीं है एक बहुत ही मजाकिया आर्ग्यूमेंट लेते हैं कि साहब हम तो भारतवर्ष में है नहीं इसलिए हम आपके कानून के अधीन है नहीं, आप हमारी अदालत में आइए और फिर हमें ऑर्डर लेके दीजिए। मुझे लगता है ये आर्ग्यूमेंट चीन में भी रिजेक्ट हुई है, ये आर्ग्यूमेंट फ्रांस में भी रिजेक्ट हुई है और भारत में भी रिजेक्ट होने की आवश्यकता है। अगर आप भारत की जनता को टारगेट कर रहे हैं, अपनी सेवाएं भारत में विद्यमान कंप्यूटर्स पर उपलब्ध करा रहे हैं, तब आप भारतीय कानून के अधीन हो जाते हैं और आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप इस तरह की ट्रोलिंग को तुरंत समाप्त करें या जैसे जैसे आपको नॉलेज मिले आप उसको रिमूव करें। हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला किया श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, और उसमें उन्होंने जो हमने एक सेक्शन डाला था 2008 अमेंडमेंट्स में धारा 66 है उसको गैरकानूनी घोषित कर दिया है। ये जो जजमेंट आई थी मार्च 2015 में आई थी, उसके जजमेंट के आने के तुरंत बाद से हम देख रहे हैं कि भारतवर्ष में ट्रोलिंग और साइबर हैरेसमेंट, साइबर स्टॉकिंग और साइबर न्यूसेंस के जो केसेस हैं वो बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़ गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं साइबर क्रिमिनल को लगता है कि साहब मेरे खिलाफ अब तो मुकदमा हो ही नहीं सकता
जी
और मुझे कोई पकड़ नहीं सकता।
मैं इस सवाल पर वापस आऊँगा कि हमारी पुलिस कितनी इक्विप है, उनके पास इक्विपमेंट क्या है, लेकिन उससे पहले कुछ और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी अपना नाम बताइए।
हेलो सर।
जी
हेलो।
जी
सुन पा रहे हैं आप मुझे?
जी बिल्कुल, अपना नाम बताइए।
पाटिल बात कर रहे हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र।
जी पाटिल साहब महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं, आप बताइए क्या कहना है आपका?
मुझे लगता है सर कि अब तक हम अपनी स्त्रियों के प्रति हमारा नजरिया नहीं बदलेंगे।
जी
जब तक, तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो स्त्री है वो हमारी माँ है, बहन है, न कि वो एक भोग की वस्तु है।
जी जी
हाँ, तो उनके जो भी मत है वो तो कोई आला
जी पाटिल साहब, जी 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 पाटिल साहब आपकी बात, हमारे पास थोड़ा समय कम है, मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से अपनी बात खत्म करें। और हमारे साथ एक और श्रोता जुड़ रहे हैं, जी अपना नाम बताइए। हेलो
हेलो
जी अपना नाम बताइए।
मैं जितेंद्र कुमार सिंह सीतापुर से बोल रहा
हूं। जितेंद्र कुमार जी सीतापुर से, बताइए डॉक्टर साहब क्या कहना है आपका।
जी मेरा ये कहना है जो इवोल्यूशन जो हुआ है उसमें जो अपरिपक्व मानसिकता है ना
जी,
तो जो अपरिपक्व मानसिकता को कुछ समय लगता है परिपक्व बनने में, तो परिपक्व मानसिकता की ज्यादा जिम्मेदारी आती है, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको जो अपरिपक्व मानसिकता है उनको अपने से सही तरीके से जोड़ें और उनको परिपक्व बनाने की कोशिश करें।
लेकिन इस तरह के जो जो बातें लिखी जा रही हैं उसके लिए आप इंतजार करेंगे कि वो मैच्योर हों, इतना समय देंगे उनको?
अरे वो ठीक है, लेकिन इवोल्यूशन के साइड इफेक्ट आते हैं। भारत में जो इवोल्यूशन हुआ उसमें समय लगता है, काफी कुछ सिविलाइजेशन में काफी कुछ चेंजेस हुए हैं और जो साइबर वगैरह जो है वो चीजें नई एकदम आई है, डेवलप्ड कंट्रीज एकदम आई है, तो यहाँ के लोगों को समय लगेगा उसमें एडजस्ट होने में और सीखने में और अपने जो एजुकेशन में अभी काफी दिक्कतें हैं उसमें समय लगेगा सब।
जी जितेंद्र जी बहुत शुक्रिया आपकी इस पूरी बातचीत के लिए। मैं आपके पास जो दोनों बातें इन्होंने कही कि एक तो जो एवोल्यूशन हुआ है वो अभी थोड़ा नया है, अभी लोगों को पता नहीं है और उसे वो लोग भी जुड़ रहे हैं जो उसकी गंभीरता को नहीं समझते, तो इसके लिए क्या कोशिश हो रही है, क्या वो सीधे सीधे सिर्फ पढ़ाई लिखाई और इन सब चीज़ों से जोड़ देना या उसको ये मान लेना कि अभी नई चीज़ है हमें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, क्या ये उचित है? दूसरा ये कि जो मैंने पहले कहा इन सवालों से पहले कि हमारे पुलिस के पास जो इक्विपमेंट हैं, जो सुविधाएँ हैं कि कौन कहाँ से ट्रॉल कर रहा है या कौन लोगों के है, बहुत सारी फेक आईडीज़ बना ली जाती हैं, बहुत सारी गलत जानकारियाँ दे दी जाती हैं, क्या उसमें कितनी सफलता हासिल हो पाई है पुलिस को?
मैं मानता हूँ कि हमको अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। खुशखबरी ये आई है कि भारतीय सरकार ने अब घोषणा की है कि वो इस साल भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून का संशोधन करेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय सरकार संशोधनों में न केवल इंटरमीडिएट लायबिलिटी के संदर्भ में ज़्यादा विशिष्ट प्रावधान लेकर आए, जो जो दिक्कतें महिलाओं को लड़कियों को आ रही हैं उनके संदर्भ में विशिष्ट कानूनी प्रावधान लेकर आएँ और जो गलती भारतवर्ष ने 2008 में करी थी उसको दोबारा न दोहराएं। 2008 के संशोधनों में भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून ने दो तीन साइबर क्राइम को छोड़ के अधिकांश साइबर क्राइम्स को जमानती अपराध घोषित कर दिया था, तो होने क्या लगा था कि लोगों को लगने लग गया कि मुझे ज़मानत तो तुरंत मिल जाएगी और ज़मानत मिलने के बाद लोग अक्सर पहला काम करते कि अपने विरुद्ध जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, सबूत है, उसको मिटा देते, नष्ट कर जाते, और यही कारणवश है कि भारतवर्ष में साइबर क्राइम कन्विक्शंस पे अकाल सा पड़ गया है। तो पहली बात तो ये, तो मुझे लगता है कि अब आप जब तक इफेक्टिव डेटरेंट पनिशमेंट नहीं देंगे, कम से कम 7 साल की सजा ना हो।
इसमें अभी जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो क्या है?
देखिए अभी तो सेक्शन 66A डिलीट हो चुका है, तो अभी मैक्सिमम पनिशमेंट कुछ नहीं, अगर आप बहुत करेंगे, अगर अश्लील हुआ तो धारा 67 IT एक्ट में मुकदमा दर्ज हो जाएगा, जमानती अपराध है, 3 साल की सजा है, 5 लाख रुपए जुर्माना है, तो कोई खासा डेटरेंस कोई नहीं आता। दूसरा, आपने पुलिस अधिकर्मियों की प्रिपेयरनेस लेवल की बात करी, मैं मानता हूँ कि यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा बजट एलोकेट करने की ज़रूरत है, जागरूकता ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ना केवल पुलिस अधिकर्मियों में बल्कि साथ ही साथ जुडिशरी और जजेस में भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि न्यायपालिका ही अल्टीमेटली वो प्लेटफॉर्म है जो इस तरह की केसेस को डिसाइड करेगी। और मैं तो एक कदम और आगे जाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि साइबर कानून के संदर्भ में आप शिक्षा जो है पहली या दूसरी कक्षा से प्रारंभ कर दें स्कूलों में और उसको स्कूल करिकुलम का एक हिस्सा बनाएं। क्यों? क्योंकि आज हमने बच्चों के हाथ में डिवाइसेस देने शुरू कर दिए हैं जब वो 3 या 4 साल के, तो उन्हें बिल्कुल कुछ सिखाया नहीं जा रहा, आप इतने बड़े महासागर में उन्हें फेंक रहे हैं और उन्हें यही नहीं पता कि वो जो कुछ भी करने वाले हैं इंटरनेट पर उसकी कानूनी कॉन्सिक्वेंसेस या परिस्थितियाँ हो सकती हैं। तो मुझे लगता है कैपेसिटी बिल्डिंग जो है नंबर वन प्रायोरिटी होनी चाहिए, साथ ही साथ आज मुझे लगता है भारतवासियों को, विशिष्ट तौर पर महिलाओं को और लड़कियों को साइबर सुरक्षा संबंधी कुछ ज़्यादा ट्रेनिंग और एटिकेट्स देने की आवश्यकता है, उन्हें बताने की ज़रूरत है कि वो किस तरह के वो छोटे छोटे कदम उठा सकती हैं ताकि वो अपनी सुरक्षा को और ज़्यादा सुदृढ़ और प्रबल बना सके।
बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते कि जो वो कर रहे हैं, चाहे तस्वीरें डालना हो, चाहे उसके पासवर्ड से रिलेटेड जो जानकारी हो या दूसरों को, और कई बार उनको उसका इम्पैक्ट भी नहीं पता होता है, तो उस तरह से भी ये मेरा ख्याल है कि ये घटनाएं होती हैं। बहुत शुक्रिया आपका, समय अब बचा नहीं है हमारे पास। मेरे स्टूडियो मैनेजर शाकिर आलम लगातार ये इशारा कर रहे हैं कि अब मुझे ये कार्यक्रम यहीं समेटना होगा। आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम अपने श्रोताओं को भी बता दें कि ये बातचीत आपने सुनी, और अगर आपने पूरी तरह से नहीं सुनी है तो आप bbchindi.com पर इसे अगले 24 घंटे तक सुन सकते हैं। समाचारों के लिए समय नहीं बचा है, निखिल रंजन को सभी साथियों संग दीजिए अनुमति। नमस्कार।